सुजीत कुमार की आवाज में अध्याय 5 समानता। समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। यह कथन हेराल्डी लॉस्की का है। समानता का आशय मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। साधारणतः समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता का अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे पतले लंबे नाटे कुशाग्र और मंद बुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित नहीं वरन असंभव भी है। वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं और इन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की असमानता वह है कि जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि बल और प्रतिभा की दृष्टि से जो भेद किया जाता है और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, जैसा कि विकास उससे निरंतर बुद्धिबल के अधनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैषम्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास समान अवसर प्रदान नहीं हो पाते। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंत से है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। अतः समानता की विधिवत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। लॉस्की ने इसी आकार का विचार करते हुए लिखा है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप से इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। औपचारिक और वास्तविक समानता में भेद। औपचारिक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें एक देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लिए समानता की दृष्टि घोषणा कर दी जाए, लेकिन उस समानता की स्थिति को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक सार्थक प्रयत्न न किए जाएं। ऐसी स्थिति में नागरिकों की समानता संविधान के पृष्ठों पर ही रह जाती है, जीवन की वास्तविकता नहीं बन जाती। यदि एक देश में जाति और धर्म के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव की स्थिति हो, आर्थिक क्षेत्र में इतनी अधिक विषमताएं हों कि धनी व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर निर्धन व्यक्तियों पर मनचाहा दबाव डाल सकें, तो समानता एक थोथी घोषणा बनकर रह जाती है, वास्तविकता का रूप नहीं ले पाती। वास्तविकता समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए वरन व्यवहार में उन परिस्थितियों का भी व्यवस्था की जाए जिनके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां। समानता मात्र औपचारिकता ही नहीं रहे वरन एक वास्तविकता की स्थिति को प्राप्त कर सके, इसके लिए निम्न परिस्थितियों को अपनाना नितांत आवश्यक है। पहला, स्वतंत्रता और समानता की संतुलित धारणा को अपनाना। कुछ व्यक्ति स्वतंत्रता का आशय सभी बातों के संबंध में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति से लेते हैं और समानता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की पूर्ण समानता, विशेषता सभी व्यक्तियों के लिए एक समान वेतन से लेते हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता और समानता के ये अर्थ भ्रामक हैं। यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता का संतुलित अर्थों में ग्रहण करना होगा। वह स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। स्वतंत्रता की उचित परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। इसी प्रकार समानता की सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक विषमताएं हैं। दूसरा, विशेषाधिकारों का अभाव। जिस समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हों, उस समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति नितांत आवश्यक है। तीसरा, व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर। आज हम जो असमानताएं देखते हैं मूल रूप में उसके दो कारण हैं। एक प्रकार की असमानता वह है जिसके मूल कारण व्यक्तियों में बुद्धि बल और प्रतिभा का प्राकृतिक भेद है, लेकिन अधिकांश उदाहरणों में उस दूसरे प्रकार की असमानता को देखा जाता है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। उनके बारे अनेक बार बुद्धि बल और विद्या की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन परिवारों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते जैसा विकास अपने उसने निम्नतर बुद्धि वाले धनिक परिवारों के बच्चे कर लेते हैं। वास्तविक समानता की स्थापना के लिए सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न उस असमानता का अंत आवश्यक है। राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। जब हम व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर की बात करते हैं तो उसमें वह बात निहित है कि राज्य के द्वारा निर्धन परिवारों के बच्चों को संपन्न परिवारों के बच्चों की तुलना में विकास के लिए अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। तभी निर्धन व्यक्ति परिवारों के बच्चे कुलीन परिवारों में पलित पोषित बच्चों के साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे और समान अवसरों की स्थिति उत्पन्न हो सकेगी। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह समानता का उल्लंघन नहीं है, वरन वास्तविक समानता की प्राप्ति का ही एक प्रयत्न है। चौथा, पर्याप्त सीमा तक जाति और धर्म निरपेक्ष समाज। वास्तविक समानता की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सामाजिक जीवन में जन्म, धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदों को अधिक महत्व नहीं दिया जाए। इसके लिए धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की ही पर्याप्त नहीं होती। इससे आगे बढ़कर धर्म और जाति निरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की गई है। पांचवा, अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना। वास्तविक समानता की स्थापना के लिए उपर्युक्त बातों का महत्व है, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक बात निश्चित रूप से यह है कि अधिकाधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। अर्थ और आर्थिक स्थिति सामाजिक जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है और जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना नहीं होगी राजनीतिक और नागरिक समानताएं मात्र थोथी घोषणाएं बनकर रह जाएंगी। धनी व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर समाज के निर्धन व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर लेंगे और निर्धन व्यक्तियों के लिए सामान्यतया समानता मात्र एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगी। वास्तविक समानता की स्थापना के लिए अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना नितांत आवश्यक है। आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसकी आय में इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर ले। जब तक सभी व्यक्तियों को अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो जाती उस समय तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आरामदायक एवं विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। वस्तुतः धन का उचित वितरण होने पर भी वास्तविक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। समानता के विविध रूप। स्वतंत्रता के समान ही समानता के भी अनेक प्रकार हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता के प्रतिपादक इस बात पर बल देते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप में बराबर हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की समानता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है और इसे कोरी कल्पना, योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। दूसरा, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि समाज के विशेषाधिकारों का अंत हो जाना चाहिए और समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते ही महत्व दिया जाना चाहिए। समाज में जाति, धर्म, लिंग और व्यापार के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और उन्हें सामाजिक उत्थान के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। भारत की जाति व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंग भेद सामाजिक समानता के घोर विरुद्ध हैं। तीसरा, नागरिक समानता। नागरिक समानता के सामान्यतः दो अभिप्राय लिए जाते हैं। प्रथम, राज्य के कानूनों की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानूनों द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्ति को नागरिकता के अवसर अर्थात नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। चौथा, राजनीतिक समानता। वर्तमान समय में राजनीतिक समानता पर भी बहुत अधिक बल दिया जाता है। राजनीतिक समानता का अभिप्राय सभी व्यक्तियों का समान राजनीतिक अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने से है, परंतु इस संबंध में पागल, नाबालिग और घोर अपराधी व्यक्ति अपवाद कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अपने मत का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक समानता का आशय यह है कि राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए के संबंध में रंग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पांचवा, आर्थिक समानता। वर्तमान समय में इस तथ्यपूर्ण विचार को लगभग सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का महत्व सबसे अधिक है और आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह है कि मनुष्य की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनकी आय में इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर ले। जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो जाती हैं, उस समय तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आरामदायक एवं विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक समानता धन के उचित वितरण पर बल देती है। स्वतंत्रता और समानता का संबंध। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीति शास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाएगा तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं, वरन डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का यह विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। किंतु टॉकविले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों का यह विचार सत्य नहीं है। वस्तु लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता और समानता का वह रूप न तो समाज में कहीं प्राप्त है और न ही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता को उस रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में लॉस्की ने लिखा है कि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो हॉब्स के बर्बर समाज में ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्र नहीं था। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता या आय की समानता तो स्वप्न लोक की वस्तु है, जिसे समानता पर आधारित साम्यवाद शासन की व्यवस्था के प्रमुख स्टालिन ने भी मूर्खतापूर्ण बकवास कहा है। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य लिखा लिया जाता है, उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक है। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। इसी प्रकार समानता की सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है। स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है और इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। इस संबंध में वैक्टन ने लिखा है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार है के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संबंध में की जा सकती है। यदि समान अवसरों के द्वारा सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने की यथार्थ स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, जिस समाज में किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर पाए जाते हैं, वहां वह वर्ग अन्य वर्गों पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्गों को केवल नाम मात्र की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लॉस्की के मतानुसार संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों से उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते हैं। एक अन्य स्थान पर लॉस्की लिखते हैं कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समान के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहां गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहां मौलिक और नौकर जरूर मिलेंगे। वास्तव में समानता के द्वारा समानता के अधिक आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। इस बात को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताएं से पीड़ित हैं उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा, यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता पर कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। चौथा, यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अश्वादम ने ठीक ही कहा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख, जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। प्रोफेसर पोलार्ड ने इस सच्चाई को एक ही वाक्य में इस प्रकार व्यक्त किया है, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और वह हल समानता में निहित है। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन सरिता के दो तट हैं। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव का जो अभिन्न सहयोग है वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। यह नितांत संभव है कि भारत के गरीब किसानों और मजदूरों में अनेक व्यक्ति नेहरू और टैगोर के समान ही प्रतिभा संपन्न हों, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण वे अपने जीवन का विकास न कर सके हों। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी प्रकार से बहुत अधिक कठिन है जिस प्रकार एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति का पता लगाना, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी अलग अलग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक और सहायक हैं। R.H. टॉनी ने सत्य ही कहा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है।